भूपा नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके श्रीमद् भागवतम स्कंद सात अध्याय तीन श्लोक संख्या 19। नैतत् पूर्व ऋषयश्चक्षु नैतत् पूर्व ऋषयश्चक्षु न करिष्यन्ति चापरे न करिष्यन्ति परे निर्बन्धुर् धारयेत् प्राणान् निर्बन्धर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाशतम् को वै दिव्यसमाशतम् नैतत्पूर्वरिषश्चको नैतत्पूर्वरिषयश्चक्षु करिष्यन्ति च न करिष्यन्ति चापरे न करिष्यन्ति चापरे निर्बन्धधारयेत् प्राणान् निर्बन्धुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमासतम् नैतत्पूर्वरिषयश्चक्षुर् नहि एतत् यः पूर्वऋषयः तुम्हारे पहले के ऋषि तथा भृगु ने चक्षुः संपन्न किया ना नाथो करिष्यन्ति करेंगे च भी अपरे अन्य लोग निरम्भुः जल जल पिए बिना धारयेत् जीवित रख सकते हैं प्राणान प्राण वायु को कहा कौन वै निस्संदेह दिव्य समाह दैवी वर्ष शतम् 100। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ऐसे प्रतीत होता है कि यदि योगी पानी की एक बूंद भी ना पीकर वह योग विद्या से अनेक अनेक वर्ष तक जीवित रह सकता है। उसके ब्रह्मा शरीर को चींटियां तथा कीड़े पड़े छट कर जाए। अनुवाद इस प्रकार है, यहां तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसे कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, ना भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। इस तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 दैवी वर्ष तक जीवन बनाकर रखे। ओम अज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदामहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्नैष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणिता शिविशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहे हैं। बड़ा कठिन है हिरण्यकशिपु का गुणगान का वर्णन करना, क्योंकि हिरण्यकशिपु बड़ा असुर है। तो इन श्लोकों में हम देखते हैं कि ब्रह्मा एक महान भक्त हमारे संप्रदाय का आचार्य है, अभी इधर क्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का गुणों का वर्णन कर रहे हैं, खास करके उनके अंदर जो तपस करने की शक्ति है, तपस्या की जो शक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम है कि हिरण्यकशिपु इतना कठोर तपस्या किया, इसके वजह से उनके शरीर से खास करके उनके सर से ऐसा अग्नि प्रकट हुआ, ऐसा ताप प्रकट हुआ, सारे जगत में जितने भी लोग थे सब सह नहीं पाए। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को बहकाने के लिए बताए, देखो हिरण्यकशिपु अब तपस्या कर रहा है, आपका पदवी को स्वीकार करने के लिए तपस्या कर रहा है, तो इसलिए आप कुछ करो, उनके शरीर से ऐसा प्रकार ताप प्रकट हो रहा है कि हम अपनी ग्रहों में निवास नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा जी आए, जब ब्रह्मा जी जहाँ मंदराचल पर्वत में जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे उधर आके उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनके पूरा शरीर में शरीर के ऊपर ये चींटियों का जो घर होता है उसको क्या, मिट्टी से भरा हुआ था, और सारे चींटियाँ जितने भी कीड़े होते हैं सब हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर को मांस को रक्त को सब खत्म कर दिए थे, खाली हड्डियाँ ही था। हिरण्यकशिपु कुछ नहीं था, चमड़ी नहीं था, कोई मांस नहीं था, कुछ नहीं था, खाली हड्डियां थी। तो ऐसे अवस्था में हिरण्यकशिपु को इस प्रकार तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी देखे, देन लॉर्ड ब्रह्मा एंड डेमीगॉड्स स्पॉटेड हिम रिजेम्बलिंग लाइक ए क्लाउड कवर्ड बाय सन हीटिंग ऑल द वर्ल्ड बाय हिज ऑस्टेरिटी। जैसे सूर्य सारा जगत को ताप प्रदान करता है भले ही बादल के द्वारा ढका हुआ क्यों ना हो, तो वैसे ही हिरण्यकशिपु का शरीर मिट्टी के द्वारा दखा हुआ था लेकिन अंदर सूर्य जैसा उनका तपस्शक्ति की वजह से प्रकाश और ज्योति और तेज उत्पन्न हो रहा था। स्टक विथ वंडर लॉर्ड ब्रह्मा बिगैन टू स्माइल एंड दस एड्रेस्ड हिम एज फॉलोज, और जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु का इस अवस्था को उन्होंने देखा, तो इधर लिखा हुआ है कि विलक्ष्य, विलक्ष्य मतलब देखते ही, विस्मितः प्राह, विस्मितः स्टक विथ वंडर, विस्मित हो गए वो अद्भुत इस दृश्य को देख के, ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित हो गए, हो के हुए हंस तम हंस वाहन। तो ये हंस वाहन ब्रह्मा जी जो हंस के ऊपर आए हैं, प्राह इस प्रकार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सबसे पहला और इंगित करते हैं, हे कश्यप मुनि के पुत्र, क्योंकि हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है, कश्यप मुनि और दिति के पुत्र है, आप उठ के खड़े हो जाओ, प्लीज गेट अप, ऑल गुड फॉर्चून अन टू यू, यू आर नाउ परफेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटीज, आप अपने जो तपस्या में बहुत उत्तीर्ण हो चुके हो, आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, आई मे गिव यू ए बेनेडिक्शन, यू मे नाउ आस्क फॉर मी वॉट एवर यू डिजायर, जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, एंड आई शेल ट्राई टू फुलफिल योर विश, जो चाहे तुम्हारी इच्छा होगा मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन वेरी मच एस्टॉनिश्ड टू सी योर एंड्योरेंस, अद्रक्षम, मैं आज तक इस प्रकार का जो तपस्शक्ति है, तपस्या की व्यक्ति को आज तक मैंने देखा नहीं है, एतन्ते हृत्स्तम, तो आपका जो सहने की शक्ति है महत, महान है, अद्भुत है, दम भक्षितः, तुम्हारा शरीर जो है चारा प्रकार के जितने भी कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिया गया है, और अपने प्राणवायु को अभी भी आप बना के रखे हो, इस प्रकार का जो तपस्या है मैं आज तक नहीं देखा, ये अद्भुत है, महान है, करके हिरण्यकश्यपु का तपस्या का गुणगान कर रहे ब्रह्मा जी। आगे ये वाला श्लोक में ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु का तपस्या ये कहते हैं, गुणगान करते हुए, न भूतो न भविष्यति, ऐसा तपस्या पहले कोई भी नहीं किया है, महान ऋषि लोग, भृगु जैसे महान ऋषि लोग भी नहीं किया है, जो तपस्या के लिए महान माना जाते हैं वो भी नहीं किए, न भविष्यति, भविष्यति मतलब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा कोई तपस्या किया होगा। बाद में कहते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि तपस्या तो सब लोग करते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि आपने जल पिए बिना तपस्या किया, अनेकों लोग आहार ग्रहण किए बिना, सोए बिना तपस्या करते हैं, निद्रा आहार से विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन जल तो पीते ही है, लेकिन आपने तो जल भी नहीं पिया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जल पिए बिना धारयेत प्राणान, आप प्राण को अपने शरीर में धारण किए, शरीर कहाँ है, शरीर खाली हड्डियां हैं, तो हड्डियों में आपने प्राण को धारण किया, कहा वही दिव्य समा, ये एक दो दिन के लिए बात नहीं है, एक साल दो साल की बात नहीं है, सौ साल की भी बात नहीं है, हजार साल की भी बात नहीं है, सौ समहा मतलब 100 देवताओं के वर्ष, आपको मालूम है देवताओं के वर्ष मतलब हमारा एक दिन जो है, हमारा 6 महीना जो है देवताओं का एक दिन होता है, अभी देवताओं का 100 साल मतलब हमारा कितने साल हो जाएंगे, हजारों हजारों साल के बराबर माना जाता है। तो इतना साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी अपना आश्चर्य को, अपना विस्मय और अद्भुतता को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमको थोड़ा सा तत्व को जानना होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का जो टीका है जहाँ लिखते हैं कि एक बूंद पानी पिए बिना भी हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया, ये दो हिज आउटर बॉडी वॉज ईटन बाय हैंड्स, तो ये पानी का जो महत्व है, किस प्रकार योगी लोग पानी ग्रहण किए बिना भी जी सकते हैं, और पानी का महत्व क्या है, वो सब चीज़ें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इधर एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक भक्त एक अभक्त का या एक असुर का ये तपस्शक्ति को देख के गुणगान कर रहा है, ये ऐसा कैसे समझ सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इसके पीछे एक बड़ा गुह्य सिद्धांत है, ये दो स्तर में लिया जाता है इस सिद्धांत को। ये एक सिद्धांत ये है कि भले ही कोई व्यक्ति अभक्त भी क्यों ना हो, असुर भी क्यों ना हो, उनके अंदर कोई विशेष क्या या अद्भुत चीज़ देखा जाता है, एक भक्त उसको देख के स्मरण करते हैं, किसका स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये भक्तों में अभक्तों में अंतर ये है। जब एक असुर भगवान के मंदिर में आता है या नास्तिकवादी भगवान के मंदिर में आता है, भगवान को दर्शन करके उनको क्या स्मरण होता है? पत्थर का स्मरण होता है। वो सोचता है कि कितना सुंदर पत्थर है, ऐसा सोचता है। लेकिन एक भक्त जब कोई पहाड़ में जाता है या कोई महान झरना में जाता है, तो उधर एक अद्भुत दृश्य को देख के तो भगवान का स्मरण करता है। जैसे कि एक भक्त है हमारे रसराज प्रभु, वो बड़ा साइंटिस्ट लोगों को प्रचार करते हैं, आप सबको मालूम है। तो एक साइंटिस्ट थोड़ा सा रुचि रखा हमारी भारतीय संस्कृति में, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा संस्कृति दिखाने के लिए इधर 2-3 दिन कहीं लेके जाइए। तब रसराज प्रभु लेके गए थे उनको तिरुपति बालाजी मंदिर में। तो भगवान साक्षात विराजमान है, तो मंदिर में गए, भगवान के सामने जैसे गए, तो ये जो साइंटिस्ट कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह जो है, इधर से सारा जगत को शक्ति प्राप्त हो रहा है। तो कौन है? वो नास्तिक है। तो भगवान को देख के उनको क्या स्मरण हो रहा है? भगवान की शक्तियों का स्मरण हो रहा है। तो वही प्रभुपाद जी जब अमेरिका में नायग्रा फॉल्स, आप जानते हो नायग्रा फॉल्स, बड़ा सा विश्व में बड़ा प्रसिद्ध झरना है, तो कितना किलोमीटर ऊपर से पानी बहुत तेजी से गिरता है, जब नीचे गिरता है इतना भयानक सा आवाज आता है। तो उसको देख के प्रभुपाद जी ने क्या कहा? सो वंडरफुल इज कृष्णस क्रिएशन, कितना अद्भुत है भगवान कृष्ण की सृष्टि। तो उधर कृष्ण नहीं है, विग्रह नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति को देख के भक्तों को भगवान याद आते हैं, और अभक्त लोग जो है भगवान को दर्शन करके भगवान की शक्तियों को याद करते हैं। यही अंतर है। ये नास्तिकतावादी भले ही वो कितना भी भगवान के पास लेके आए, मंदिर में भी लेके जाओ, भगवान सामने आने के बाद भी उनको भगवान का स्मरण नहीं होता है, इसको व्यक्ति नास्तिक कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी कौन है? एक महान भक्त है। एक भक्त होने के नाते जब उन्होंने देखा एक महान और अद्भुत चीज को देखा, देखते तुरंत उनको भगवान की विभूति करके कृष्ण का स्मरण हुआ। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तत्तत्तेवाभिगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान कहते हैं कि इस जगत में कोई भी अद्भुत चीज को देखो, चाहे वो असुरी विभूति भी क्यों ना हो, जैसे हिरण्यकशिपु का ये जो विभूति है वो कौन सा विभूति है? ये असुरी विभूति है। जैसे कोई हिटलर है, वो भी ऐसा भयानक सा वो कार्य कर दिया था, वो भी एक प्रकार का भगवान का कृपा के बिना क्या वो कर सकता है, भगवान का शक्ति के बिना? तो ये पूरा हिरण्यकशिपु का सिद्धांत में या प्रसंग में प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने कि हे प्रहलाद, मैं तुमको मारने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुम मरते क्यों नहीं हो, तुमको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो प्रहलाद ने क्या कहा? आपको जहां से शक्ति मिल रहा है उधर से ही मुझे ही मिल रहा है, ये मत सोचो कि आपको कहीं और से मिल रहा है, मुझे कहीं और से मिल रहा है। तो ये क्रिश्चियन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि दोष अलग अलग शक्तियां हैं, एक दैवी शक्ति है, एक असुरी शक्ति है, असुरों को जो है असुरी शक्ति प्रदान करने वाला कोई और है, और भगवान जो है देवी लोगों को देवी शक्ति प्रदान करते हैं। अलग नहीं, भगवान से ही असुरों को शक्ति मिलता है। हिरण्यकश्यपु को ये तपस्या करने की शक्ति किसने प्रदान किया है? क्या भगवान की अनुमति के बिना, उनके उनके कृपा के बिना क्या हिरण्यकश्यपु ये कर सकता है? अभी हिरण्यकश्यपु का महिमा इधर चल रहा है कि वो प्राण को अपनी हड्डियों में बिना जल पी के बना के रखा। अस्तित्व में प्राण को शरीर में बना के रखने वाले कौन है? भगवान ही है, परमात्मा ही आत्मा को बना के रखते हैं कि शरीर में अभी तक रहो, अभी जाओ मत, अभी टाइम नहीं है। जैसे टाइम आया तो आत्मा, जैसे निकलने का टाइम हुआ तो परमात्मा जैसे बोलेंगे अब निकल जाओ, खत्म हो गया। तो ये ब्रह्मा जी ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो विस्मिता, वो केवल विस्मय जो है ये भौतिक स्तर में विस्मिता नहीं है, अरे कितना अद्भुत है, कितना महान है। ये जो नियोफाइट भक्त होते हैं, यानी जो नवदीक्षित भक्त होते हैं, ये माया का जो थोड़ा सा सुंदर चीज दिखाई पड़ा तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, और माया का कुछ सुंदर प्रस्ताव आया, कोई अद्भुत चीज देखा तो तुरंत मोहित हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो शुद्ध भक्त होते हैं, भले ही कुछ भौतिक चीज अद्भुत भी क्यों ना वो दिखाई पड़ता है, उसको भले ही सराहना भी करे लेकिन आकर्षित नहीं होते, उनके प्रति एकदम अपना दिल बहा नहीं देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तो तब उन्होंने एक पिक्चर चल रहा था, सिनेमा चल रहा था चार्ली चैपलिन का, आप सब जानते हो चार्ली चैपलिन कौन है, बड़ा हास्य दृश्यों को या हास्य मूवियों पिक्चरों को बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो प्रभुपाद जी उसको देख के बड़े मजे से देख रहे थे, आनंद ले रहे थे, हंस रहे थे। तो इनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी हमको तो पिक्चर देखना नहीं चाहिए, आपने तो कहा। तो प्रभुपाद ने कहा, ही इज ए वेरी गुड एक्टर। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे एक्टर है। तो उसमें क्या ये भौतिक है? नहीं है, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो नाट्य या अभिनय करने की या ड्रामा करने की एक्टिंग करने की जो कला है उसको सराहना करते हुए अल्ततः कृष्ण को सराहना कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कला है उसको कौन प्रदान किया, वो कृष्ण ही प्रदान किया। इसलिए इस जगत में कोई भी अद्भुत चीज को देखते हैं तो ये नहीं कि उसको ये माया है ऐसा निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके प्रति भले हम आसक्त नहीं होंगे, दिल नहीं भाएंगे, लेकिन ये देखना चाहिए मेरे कृष्ण ने ये अपनी जो ऐश्वरी को इसके द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। तो कृष्ण का जो तपशक्ति है वो हिरण्यकश्यप में थोड़ा समय के लिए आवेशित हुआ, भले ही थोड़ा समय के लिए विभूति के रूप में प्रकाशित किया गया है, उसको देख के ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। देखो मेरे कृष्ण कितने बड़ा महान है कि ये असुरों को भी ऐसा शक्ति प्रदान करते ताकि वो तपस्या करके दिखाए सारे जगत को। तो ये मूल सिद्धांत ये जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी का ये हिरण्यकश्यप का गुणगान करने के पीछे ये जानना चाहिए कि हिरण्यकश्यप का गुणगान नहीं है, भगवान की जो तपशक्ति का आवेश अवतार कौन है, नर नारायण ऋषि है। कि नर नारायण ऋषि का तपस्या पढ़ेंगे आगे अध्याय में तो हिरण्यकश्यप को तपस्या भी फीका पड़ जाता है, लेकिन अंततः हिरण्यकश्यप भी तपस्या कर रहा है, ये तपस्या करने की जो शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये भी भगवान कृष्ण का ही ऐश्वर्य है। तो ये असुरों का ये कार्य को देख के ब्रह्मा जी भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं और बहिरंगिक तरीके से इधर हिरण्यकश्यप का गुणगान हो रहा है। तो इधर आगे देखते हैं कि हिरण्यकश्यप को इस अवस्था में देख के ब्रह्मा जी कुछ श्लोकों को उच्चारण किए जिसका हमने पढ़ा। खास करके आज का जो श्लोक में सबसे पहला पॉइंट ब्रह्मा जी कहते हैं कि नैतत् पूर्व ऋषयः न एतत् न, इस प्रकार का यानी इस प्रकार का जो तपस्या है पूर्व ऋषयः अनेकों ऋषि लोग है वो कोई किया नहीं है, न करिष्यन्ति च अपरे, न अपरे मतलब बाकी लोग, करिष्यन्ति करिष्यति मतलब भविष्य, भविष्य में फ्यूचर टेंस में, जैसे संस्कृत में पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, और ये फ्यूचर टेंस को करिष्यन्ति मतलब करने वाले है, चा परे ऐसा कोई नहीं होगा निश्चित रूप में ऐसा इस प्रकार का तपस्या करे। तो इसके पीछे ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या है, करिष्यन्ति हिरण्यकश्यप आपने इतना बड़ा तपस्या किया तो पहले तो इस प्रकार का तपस्या कोई किया नहीं है और दूसरा कोई और आगे नहीं करेगा। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि इस प्रकार का घोर तपस्या, इतना कठिनाई उठाना, वो भी किसके लिए है, थोड़ा समय का थोड़ा ऐसा पदवी को प्राप्त करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसके लिए कोई इतना तपस्या नहीं करेगा। ये भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं लेकिन किसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, खुद क्षुद्र चीज़ें हैं भौतिक जगत का, जैसे आजकल लोग जो है एक दो कमरे का मकान लेने के लिए और थोड़ा सा दो वक्त का रोटी खाने के लिए, रोटी भी नहीं खाते मुंबई में तो वड़ा पाव खाते हैं, तो उसके लिए आप देखो कितना मेहनत करते हैं कितना तपस्या करते हैं, है कि नहीं, वो ट्रेन में चढ़ना और कहीं 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 जाना और अलग जगह भटकना और बॉस का गाली खाना, इतना मेहनत करने के बाद वो किसके लिए करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं जो जानवरों को फुकट में मिलता है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को क्या कहते हैं कि नायम देहो देह बाजाम लोके कष्टान कामान पुत्र का येन सत्वम शुद्ध हेत ब्रह्म सौख्यम परंतम। वो कहते हैं कि ये जो नायम देहो देह बाजाम लोके कष्टान कामान हरड अर्हते विद्भुजान ये नायम हे तो पुत्रों आप सुनो, तपस्या मत करो। किसके लिए तपस्या मत करो? इसके लिए तपस्या मत करो, वो ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए तपस्या मत करो जो विड भुजान्ये। विड भुजा, विड मतलब मल, तो भुजा मतलब खाने वाला। मल खाने वाला जानवर कौन सा है? सुअर है। तो सुअर को प्राप्त होने वाले चीजों को, जो चीज सुअर फुकट में मिल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए आप इतना कठिनाई को क्यों करते हो? जैसे लोग स्कूल और कॉलेज में जाके बहुत तपस्या करते, बहुत कठिनाई करना पड़ता है, एग्जाम लिखो, वो सब लिखो, अंततः उसको पूछो ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? स्कूल क्यों जा रहे हो? अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। तो इसके अच्छा नंबर प्राप्त करने से क्या होगा? तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या फ़ायदा है? अच्छा नौकरी मिलेगा। तो अच्छा नौकरी मिलेगा क्या फ़ायदा है? अच्छा नौकरी में अच्छा पैसा मिलेगा। उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो क्या अच्छा घर मिलेगा। तो अच्छा घर मिलेगा क्या फ़ायदा है? तो अच्छा स्त्री मिलेगा मुझे। तो अच्छा स्त्री मिलेगा तो फिर वो तो ठीक है, और क्या चाहिए तुमको? नहीं, खाने के लिए थोड़ा मिल जाएगा, अच्छा सा खाने के लिए मिलेगा। तो अच्छा खाने के लिए मिलेगा, अच्छा स्त्री मिलेगा, उसके लिए पूरा जीवन भर तपस्या करते हो। अभी देखो एक सुअर या कुत्ता है, वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, वो कुछ नहीं करता है। लेकिन उसको भी स्त्री मिलता है, उसको खाना मिल जाता है। यानी दूसरे शब्दों में जो चीज़ें सुअरों को फुकट में मिल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। यानी देखेंगे तो हम कौन हैं, जानवरों से सुअरों से गए गुजरे हैं। तो इस हिसाब से हिरण्यकश्यपु की बात कह रहे हैं, हे मूर्ख हिरण्यकश्यपु, ना पहले ऐसा कोई किया है। यानी इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा मूर्ख पहले कभी हुआ नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में तुम ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, इतना कठोर प्रयास जो असंभव है। हिरण्यकश्यपु अस्तित्व में आप बाद में मांगेगा कि मुझे अमृतत्व चाहिए, मुझे इसी शरीर में हमेशा के लिए जीना है। अभी हिरण्यकश्यपु बड़ा विद्वानों वाले बात कहा था, है कि नहीं? पिछले अध्याय में बड़े बड़े दार्शनिक बातें उन्होंने किया, जिनका जन्म हुआ है उनका मरना निश्चित है, ये शरीर अनित्य है। इतना बड़ा प्रवचन देने के बाद तुरंत ऐसा तपस्या करना शुरू किया, किसके लिए? मुझे बस शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। कहाँ गया वो ज्ञान? इसको बोलते असुर। असुर मतलब वो सिद्धांत उसको मालूम है, मालूम होने पर भी उनका जो काम है उनके हृदय में, वो काम जो है वो ज्ञान को हर लेता है। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि आवृत्तम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते अदुष्पूरेण अनलेन च। जिसके हृदय में जो बहुत सारे कामना होती है, वन इज वेरी लस्टी, वो जब उपदेश देने का समय आता है तो बड़े बड़े उपदेश देता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आचरण करने की बात आता है तो सब खत्म हो जाता है। तो अभी उनको अभी प्रवचन दिया कि आत्मा अमर है, ये शरीर जो है नश्वर है, उसके ऊपर कितना अच्छा सुंदर व्याख्या दिया पिछले अध्याय में। वही हिरण्यकश्यपु अभी प्रारंभ कर रहा है तपस्या करने के लिए। क्या तब किसके लिए? ताकि मैं अमर हो जाऊं। तो उस बात को लेके ब्रह्मा जी किए हैं कि इस प्रकार का बड़ा मूर्ख जो है, इस प्रकार का कामी पुरुष है, ना भूतो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, जो इतना तपस्या कर रहा है ऐसा चीज को प्राप्त करके जो प्राप्त कर ही नहीं सकता। अगर कोई हो सके कितना भी बड़ा स्थिति को प्राप्त भी कर ले, हर चीज नश्वर है। तो इसलिए इससे बड़ा सीख हमको मिलता है कि हिरण्यकश्यपु जैसा बनना नहीं चाहिए, हिरण्यकश्यपु जैसा इस प्रकार का तपस्या नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट डू तपस्या लाइक हिरण्यकश्यपु, एक बड़ा सीख है। भगवद्गीता में भगवान तपस्या के बारे में कहते हैं कि ये तीन प्रकार का तपस्या होती है। हर एक चीज तीन प्रकार का होता है इस जगत में, सात्विक, रजसिक और तामसिक। वो कहते हैं जो लोग डंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विधि तो शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं। तो ये श्लोक जो है हिरण्यकशिपु को स्पष्ट लागू होता है। तो सबसे पहला बात यह है कि वो क्या करते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ते तपो जना। तो अशास्त्र, तो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस प्रकार का तपस्या करने वाले केवल हिरण्यकशिपु ही नहीं बल्कि अनेकों आजकल समाज में हमको प्राप्त करते हैं। तो आजकल मान लीजिए हम किसी को मंदिर में निमंत्रण देते, एक बार मुझे मालूम है मैंने एक परिवार को निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने कहा कि महाराज आए थे प्रवचन वगैरह सुने, तो मैंने कहा कि आइए प्रसाद लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लेंगे, तो बोला कि आज सोमवार है। तो ना सोमवार हो तो क्या हुआ तो मैंने कहा नहीं सोमवार हम व्रत रखते हैं। मैंने बोला किसका व्रत है, वो किसका तपस्या है, आप तपस्या क्यों कर रहे हो। नहीं आज जो है ना आज शिव जी का है। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी और कौन सा दिन आप व्रत करते हो। बोला कि हम जो है सोमवार को ये करते हैं, मंगलवार को ये करते हैं, बुधवार को ये करते हैं और शुक्रवार को ये करते हैं। अंततः देखो हम इतना सारा पाप तो करते हैं, बहुत दुख है, हमारा शनि जी हमारे पीछे पड़े हैं, शनिवार को तो करना ही पड़ेगा शनि जी के लिए। बोले रविवार को क्या करते हो, रविवार को जो है हम तपस्या नहीं कर पाते, हम थोड़ा नॉनवेज खा लेते हैं तो क्या इसको असुर कहा जाता है, ही इज ए असुरा, जो अपनी मनमानी कुछ ऐसे नियम बना के तपस्या कर बैठता है उसको असुर माना जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य आगे तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो तपस्या वगैरह जो तामसी तपस्या माना जाता है, दूसरों को दुख देने के लिए जो तपस्या किया जाता है वो तपस्या को वो तामसिक माना जाता है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, जब उनको जो मांगा हुआ चीज़ नहीं मिलता है, बोलते हैं बच्चे का मुझे बोलते हैं मुझे भाई मुझे साइकिल चाहिए, तो मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं मिलेगा तुमको साइकिल। तो बच्चा क्या करता है, जाओ नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगा जाओ। तो उसका बच्चे का नहीं खाना जो है वो बड़ा तपस्या माना जाता है, लेकिन नहीं खाना तो तपस्या है, लेकिन वो तपस्या किसके लिए है, वो साइकिल प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये बच्चा इतना बुद्धिमान है, वो जानता है अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे यानी उनका उद्देश्य ये है कि मेरी तपस्या के द्वारा मैं दूसरों को दुख प्रदान करूंगा, मैं दूसरों को दुखी करूंगा। जब वह दूसरों को दुखी करूंगा तो उनका दुख अपना दुख बिठाने के लिए मुझे साइकिल दे देंगे तब मैं खाऊंगा। तो ये तामसी तपस्या माना जाता है। और प्रकार का तपस्या है जो ये हंगर स्ट्राइक, जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स नेता लोग करते हैं, जो इंडिपेंडेंस के टाइम में बड़े बड़े नेता लोग बोले थे नहीं हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो सभी लोग नहीं खाएंगे, तो ऐसा हुआ था। तो जो लोग भाग लेना चाहते हैं आप आइए। तो इसके पीछे एक बड़ा एक मैं लेख पढ़ा था, एक व्यापारी एक बड़े ब्रिटिश टाइम के एक बड़े प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक नेता है वो भूखा रह के वो क्या कर रहा है कि सारे भारत में सभी लोगों का वो परेशान कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं अरे ऐसा कैसे, वो तो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है हमारी स्वतंत्रता के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो भूखा है, वो कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन ये भूखा है करके देखने के लिए उसको हजारों लोगों लोग आ रहे, तो उनको कौन खिलाएगा जब उनको देखने के लिए हजारों लाखों लोग आ रहे वो अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे, तो ये फुकट का खा रहे सब लोग, यानी देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो ये बड़ा सुंदर लेख लिखा उसके अंदर, वो चकित हो जाएंगे कि ये जो प्रत्येक कार्य जिनको महात्मा माना जाता है, तो इनका प्रत्येक कार्य अस्तित्व महात्मा का नहीं है बल्कि दुरात्मा का है करके साबित करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अशास्त्र शास्त्र के विरुद्ध उन्होंने तपस्या किया। यह राजसिक तपस्या माना जाता है। राजसिक तपस्या के वजह से वो खुद तो परेशान होगा ही, लेकिन साथ साथ में उनका एकाएक इच्छा है मेरा लाभ हो, मेरा कुछ ऐसा पदवी मिले, मुझे कुछ पोस्ट मिले। तो अस्तित्व में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस प्रकार का हंगर स्ट्राइक में नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं तपस्या करूंगा, जो लोग जो है तपस्या करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, उन लोगों को भी करना पड़ता है, जबरदस्ती दिखाने के लिए भी क्यों ना हो. उनके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए भी जबरदस्ती करना पड़ता है. इनका जरा सा भी कुछ भी विचार नहीं है. अविवेकी व्यक्ति जो है इस प्रकार का हंगर स्ट्राइक करता है बिना खाए बिना. ये रजसिक तपस्या माना जाता है. आगे जाते हुए कुछ सात्विक तपस्या होती है. ये सात्विक तपस्या जो है वो शास्त्र के अनुसार होता है और ये तपस्याओं करने के द्वारा व्यक्ति का मन शुद्ध होता है. जैसे मन में थोड़ा सा कामुक भावना ज़्यादा आता है तो उस व्यक्ति को बोला जाता है आप थोड़ा जो है आप एक दिन के लिए जल पी के रहो या एक दिन के लिए आप केवल फल लेके रहो. तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका हमारा चित्त जो है वो साफ होता है. हमारा थोड़ा सा टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए हमारे मन में जो कामनाएं हो जाती है. लेकिन तपोदिव्यम, ये तपोदिव्यम दिव्य स्तर की तपस्या क्या है, दिव्य स्तर की तपस्या है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ ऐसे नियम पालन करते हैं ताकि हमारा ये भौतिक कार्यकलाप कम हो जाए और कृष्ण का स्मरण निरंतर रहे. जैसे एकादशी के दिन तपस्या करना है, एकादशी के दिन भक्तों को क्या करना चाहिए, केवल फलाहार या कभी कभी हो सकता है तो निर्जला भी कर सकते हैं. लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करूं और उनको कभी नहीं भूलूं. व्यक्ति जो है एकादशी कर रहा है पूरा दिन निर्जला, कोई जल भी नहीं पिया है. हिरण्यकश्यपु तो देवताओं के लिए 100 साल के लिए किया, कम से कम मैं एक दिन के लिए तो करूं करके निर्जला करना शुरू किया. लेकिन हमेशा देख रहा है कल सुबह 6:42 कब होगा क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ ना कल सुबह 6:42 को मैं जल पी सकता हूं. तो क्या किया, पूरा दिन निर्जला करते इंतजार कर रहा है कब 6:42 होगा. और अगले दिन जो जो तुरंत ये तपस्या तोड़ने के लिए या व्रत तोड़ने के लिए वो क्या कर रहा है, ये पूरा दिन जो एकादशी के दिन वो मार्केट में जा रहा है, वो लेके आ रहा है, वो जूस लेके आ रहा है, ये कर रहा है, पूरा दिन हंगामा किया. अगले दिन मैं कैसे तोड़ू व्रत को, उसके लिए वो शांति से बैठा नहीं. तो क्या हुआ, वो जैसे तपस्या करने का अगला दिन 6:42 होते ही पूरा 2 लीटर जूस पिया, नींबू जूस पिया. तो वैसे उसका पेट में क्या हुआ है, जो पित्त जमा हुआ है, एक दिन खाया नहीं तो पित्त बहुत जमा रहता है, एसिड तो है ही, और उसके ऊपर नींबू डाल के और एसिड डालो और उसके ऊपर अभी फीस्ट, एक द्वादशी फीस्ट है, उसके अंदर पनीर सब्जी वगैरह दबा के खा लिया तो एक दिन नहीं खाया, दूसरा दिन दबा के खा लिया तो क्या हुआ, तो अभी कल फास्टिंग किया ना तो आज फीस्टिंग हो, उसके पेट गड़बड़ खराब हुआ और द्वादशी के दिन पूरा दिन सोया. तो इस प्रकार का जो तपस्या है वो कोई काम का तपस्या नहीं है. अंततः ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जो तपस्या करता है भले ही वो निर्जला करता है, कोई भी प्रकार का तपस्या करता है, वो दैवी भी क्यों ना हो, वो दूसरों को बताने से अपना फल जो है वो खत्म हो जाता है. इसलिए करना है तो चुपचाप कर देना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा एडवर्टाइज करते हुए, नहीं नहीं मैं ये व्रत कर रहा हूँ, मैं केवल 10-12 दिन के लिए केवल दूध ही पीऊँगा, सभी लोग आके देखो तो उनको क्या होने वाला है, केवल उनको कॉन्स्टिपेशन होने वाला, उसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है. इसलिए कुलशेखर आलवार कहते हैं कि आम्यया अभ्यसानि अरण्यरुदितम वेदव्रतानि मेदश्चेद फलानि पूर्त हृदया सर्वमुतम भस्मनी विना यद् पाद द्वंद्वांबरो संस्कृतिम विजयते देवहाशी नारायणाय नारायणाय. तो कुलशेखर आलवार कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में कि आम्यया अभ्यसनानि, भले ही वैदिक मंत्रों को उच्चारण भी क्यों ना हो, बड़े स्पष्ट तरीके से सारे वैदिक मंत्र हाँ चल रहा है, भले ही इस प्रकार का उच्चारण क्यों ना हो, ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो है अरण्यरुदितम, अरण्यरुदितम मतलब अरण्य में जाके जंगल में जाके रोने के बराबर है. जंगल में जाके रोओगे तो कौन सुनेगा, कोई सुनेगा, उसको कुछ फायदा है, कोई फायदा नहीं है. वेदव्रतान्यनुहम मेदश्चेद फलानि, ये वेदव्रतान्यनुहम, वेदों में भले को प्रकार के जो तपस्या क्या वर्णन है, तो भले शास्त्रोक्त भी क्यों ना हो, वेदों के अनुसार भी क्यों ना हो, उस प्रकार वैदिक व्रतों को वर्णन आचरण करना, तो ये क्या है, मेदश्चेद फलानि, वेट लॉस टेक्निक. आजकल बहुत जगह आता है ना वेट लॉस, आप अपना शरीर का वजन कम कीजिए, तो एक व्यक्ति ने कहा, एक कंसल्टेंट के पास गया, कंसल्टेंट मतलब जो सलाह देता है, तो ने कहा कि मेरा नौकरी छूट गया है, मैंने बहुत सारा धंधा किया, सब नुकसान ही नुकसान गया है, अभी मार्केट बराबर नहीं है, मैं क्या करूँ। तो कंसल्टेंट ने कहा, ये एक ऐसा धंधा है जो कभी वो उसका आपका कभी घाटे में नहीं जाओगे। तो ने कहा, क्या है वो धंधा? उन्होंने कहा कि दुबले को मोटा करो, मोटा को दुबला करो। तो कलयुग में जो है ये धंधा जो है बड़ा अच्छा चलता है। तो कुलशेखर आलवार कहते हैं कि ये वेद व्रतान अनुहम, इस प्रकार का वेद मेदश्चेद फलानी, खाली अपना जो पतला होने के लिए एक टेक्निक मात्र है। और पूर्तोदया सर्वोत्तम रसपनी, स्वाहा स्वाहा करने वाले जो कार्य है ये सब इतना व्यर्थ है कि अगर घी को आप ऐश में डालेंगे, अगर घी को अगर वो आप राख में डालेंगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। विना तत्पादाम्बुर संस्मृतिम, भगवान के चरणों का स्मृति के बिना किया गया जो तपस्या है वो इस प्रकार निष्फल है जिस प्रकार ये वैदिक व्रतों को करना हो या अन्य शास्त्रों का या वैदिक मंत्रों को उच्चारण करना हो। ये करते करते अगर कोई व्यक्ति भगवान का चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है उनका तपस्या जो है वो राजसिक तपस्या माना जाता है। तो ये राजसिक और तमसिक माना जाता है क्योंकि इतना उनका तपस्या करने लगे जिसके वजह से वो सारे देवता लोग भी परेशान थे। उनका इच्छा क्या था? मैं ब्रह्मा जी जैसा एक लोक प्राप्त करूं। और सात्विक तो था ही नहीं, इतना हद तक कि सात्विक तपस्या भी हमारा हमको नहीं करना चाहिए, केवल दैवी तपस्या, जिन तपस्या के द्वारा कृष्ण की प्रसन्नता होता है, कृष्ण का स्मरण हमेशा बना के रखता है, वैसी तपस्याओं को हमको करना चाहिए। तो ये बात हमको ये हिरण्यकश्यपु का प्रसंग से प्राप्त होता है कि भले ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ना भूतो, ना भूतो मतलब ऐसा बड़ा मूर्ख मैं कहीं देखा नहीं हूं। हाँ, इतना ऋषि लोग तो करेंगे नहीं, क्यों भृगु मुनि क्यों करेंगे ऐसा तपस्या? वो करेंगे भी तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योगी लोग, तपस्वी लोग जंगल में जाके नाना प्रकार का कुछ लोग ऐसे है तपस्या करते हैं। आप कुंभ मेला में अन्य जगह कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे कुछ तपस्वी है, उनको आप चपाती दो, क्या करते हैं मालूम है? उसको जलाएंगे, कोयला जैसे काला बनाएंगे और उसको खाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इतना कठोर तपस्या के बाद भी जो लोग वो प्राप्त नहीं कर सकते यानी कृष्ण प्रेम, उनको उस चीज को भक्त लोग केवल रसगुल्ला खाते खाते हंसते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्तों का ख्याति है। प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों के लिए खाली एक ही तपस्या है, देयर इज ओनली वन तपस्या फॉर देम, क्या वो? मैं कैसे गुरु का आज्ञा पालन करूं, वही तपस्या है। इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज योर तपस्या। क्योंकि सबसे बड़ा कठिन कार्य क्या मालूम है इस जगत में? बिना खाए रहना नहीं है, बिना पिए रहना नहीं है, हमारे गुरु का आज्ञा को पालन करना। तो हमारा अहंकार जो है वो तुरंत बोलता है मैं क्यों करूं, उनका बात क्यों मानूं। लेकिन ये हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे जो अधिकारी होते हैं, हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, उनकी बातों को यथारूप में स्वीकार करना ही सबसे बड़ा तपस्या है। द ग्रेटेस्ट तपस्या इज टू जस्ट फॉलो व्हाट हैज बीन टोल्ड। अगर वो करेंगे तो बाकी सब जो कर लिया समझ लीजिए कोई और अन्य आवश्यकता है ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू जस्ट हैव टू डू। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? एकादशी फीस्ट। तो आज तक कोई आचार्य ने इस प्रकार किया नहीं है। तो लोग इतना इतिहास में लोग हम जानते हैं कि शास्त्रों में मैंने जगह कहा कि एकादशी फास्टिंग सुना है, एकादशी के दिन क्या करो? उपवास करो। लेकिन ये शब्द कभी इतिहास में रचना नहीं किया गया था, एकादशी फीस्ट। तो क्या कहा प्रभुपाद जी ने कि आप एकादशी के दिन भले ही खाना पड़े आपको, कृष्ण का एकादशी फलाहार प्रसाद ग्रहण करो, ग्रहण करके जाके प्रचार करो। और एकादशी और अन्य तपस्या के नाम पे आप निर्जला करते हुए कमरे में दिन भर सोते रहेंगे, क्या फायदा उसका? देयर इज नो यूज ऑफ इट। बेटर यू ईट, मेंटेन योर बॉडी नाइसली एंड देन डू प्रीच प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। वास्तविक तपस्या है गुरु का आज्ञा। फिर प्रभुपाद का आज्ञा क्या है? अपना स्वयं अपना भजन करो और साथ साथ में प्रचार करो। अगर हमारी तपस्या अपने भजन में प्रचार में बाधा पड़ रहा है, वो तपस्या तपस्या नहीं बल्कि इंद्रिय तृप्ति है। तो नहीं खाना भी इंद्रिय तृप्ति है, नहीं पिए बिना रही रहना, कुछ कठिनाइयों को उठाना, ये भी इंद्रिय तृप्ति माना जाता है। हिरण्यकश्यपु का तपस्या दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में हिरण्यकश्यपु जैसा कामी पुरुष आज तक जगत ने नहीं देखा है, उस बात को कहा जा रहा है। हे हिरण्यकश्यपु, आज तक ऐसा कामी पुरुष को मैंने देखा है, ना आगे होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा परिणाम क्या, इतना बड़ा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा मृत्यु कितना भयानक सा हुआ। इतना सारा योजना बनाने के बाद भी हिरण्यकश्यपु फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी भयानक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नहीं मरने के लिए, तो भगवान का जो लॉ है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये लागू होगा ही, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ब्रह्मा जी भी वो ब्रह्मा जी का भी वरदान भी क्यों ना हो, ये जो संसार का जो नियम है, जातस्य ध्रुव मृत्यु क्यों नहीं होगा। ये शिक्षा दोगे है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु को, तो तुम्हारा शिक्षा जो है, ये शिक्षा को देख के आगे कोई ऐसा तपस्या नहीं करेगा। तो ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि आज तक ऐसा मूर्ख ना हुआ है। बाकी सब मूर्ख लोग इनको देखेंगे, तुमको देख के बाद में क्या करेंगे, इस प्रकार का तपस्या नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। निर्बंधुर धारयेत् प्राणार को वै दिव्य समाशतम। तो जल के बिना, जल के बिना ये शब्द आया है इधर, निरंबुर, निरा अंबु, अंबु मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि रापो, अंबु अंबु मतलब ये जल, निरंबुर मतलब जल पिए बिना। थोड़ा सा हम जल का महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि इधर खास करके ब्रह्मा जी ने नोटिस किया कि आपने जल भी नहीं पिया, आश्चर्य की बात है, नहीं खाया तो ठीक है लेकिन जल भी नहीं पिया, ये तो आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य प्रकाशित कर रहे हैं? भागवत के तीसरे स्कंद में वो श्लोक ढूंढने के लिए प्रयास किया लेकिन टाइम नहीं मिला, मिल नहीं रहा था। वृंदावन में मैं था तो वो श्लोक आया था जिसके अंदर जब सारे पंच तत्व पंच महाभूत प्रकाशित हो रहे थे, उसके अंदर पृथ्वी का सब प्रकाशित होने के बाद पर एक श्लोक में आता है कि ये सारे तत्वों में पंच महाभूतों में जल अति महत्वपूर्ण है। तो वो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार था, उस दिन मुझे उसके ऊपर क्लास देना था। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में लिखते हैं, तो ये जल की महत्व के बारे में लिखते हैं। तो ये जल का महिमा ऐसा है कि ये जल के वजह से ही सारे पंच तत्व या पंच महाभूत अपना गुणों को प्रकाशित करते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण होता है गंध, लेकिन वैसे जल नहीं डालेंगे तो पृथ्वी का गंध जो है वो बाहर प्रकाशित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी रास्ते में चलते जाइए पृथ्वी के ऊपर, अभी जैसे आश्रम की ओर जाएंगे तो आपको कोई स्मेल नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बारिश आता है तो पृथ्वी से सुगंध आता है कि नहीं, आपने अनुभव किया है? यानी जब पानी का मिश्रण पृथ्वी के साथ होता है तभी पृथ्वी का वास्तविक गुण प्रकाशित होता है। तो पृथ्वी जो है उनका अपना गुण को बाहर प्रकाशित करने के लिए जल के ऊपर आधारित है। बाद में यही पृथ्वी का परिणित जो आहार है, जब हम ग्रहण करेंगे वो आहार से शक्ति तभी उत्पन्न होगा जब हम जल ग्रहण करेंगे। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो शरीर में खाली पेट में 3/4 भरना चाहिए, 3/4 अन्न से भरना चाहिए, आधा जो है वो अन्न से भरना चाहिए, एक चौथाई अन्न से भरना चाहिए, आधा जल से होना चाहिए और बाकी जो स्पेस है वो हवा के लिए टाइम जगह देना चाहिए, तभी आपका हजम होगा। तो जल पिए बिना हमारा जो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। तो ये कब्ज बीमारी की वजह से सारे प्रकार की बीमारियां आती है। ये होने के बाद अगर ये कब्ज की बीमारी को दूर करना भी है, सारे बीमारी को दूर करना है, ये जल के द्वारा ही होगा। तो ये पृथ्वी और उनके लक्षणों को प्रकाशित करने के लिए, यानी उसे शक्ति भी प्राप्त करना हो या उनके गंध भी प्राप्त करना हो, जल का मिश्रण अति आवश्यक है। पृथ्वी के बाद पृथ्वी जल, जल तो है, अग्नि, अग्नि इतना भयानक है सारा जगत को जला सकता है, इसके अंदर इतना शक्ति है, लेकिन थोड़ा सा जल डाल दिया तो क्या होगा, वो खत्म होता है। यानी भले ही अग्नि बहुत तेजस्वी है लेकिन जल का प्रभाव से वो बुझ जाता है। तो इसके पता लग सकते हैं कि ये जल जो है अग्नि को बुझाने का भी शक्ति उसके अंदर है. पृथ्वी, जल, अग्नि, बाद में वायु. देखिए वायु उनके प्रभाव की वजह से तो हम अनेकों अनेकों चीज़ों को अनुभव करते हैं, लेकिन ये वायु जो है वो भी आधारित है किसके ऊपर? जल के ऊपर आधारित है. अगर जल नहीं है, वायु का बहना और अनेकों प्रकार की जो कार्यकलाप करना वो सब बंद हो जाता है. जैसे प्योर ऑक्सीजन, प्योर वायु अगर आप सांस को सांस के रूप में अंदर लेंगे, हमारा शरीर जल जाएगा. उसके अंदर निश्चित रूप में थोड़ा सा वाटर वेपर होना चाहिए. जो लोग साइंस पढ़े हैं ये जानते हैं, भले ही आपको हवा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हवा इस प्रकार जो हमको संयोग रूप में स्पर्श हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा जल है, जल का परिणाम है. जैसे इस जो भी हवा में आप थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, आपको जल निकलेगा. तो एक मशीन अमेरिका में कोई साइंटिस्ट ने वो बनाया है, वो एक ऐसा पंप है जो आपको हवा से पानी निकाल के दे देगा. आपको इतना तक की जाने की क्या ज़रूरत है? आप एसी चलाते हो, पानी निकलता है कि नहीं? ये कहाँ से आया पानी? हवा से आया कि नहीं? यानी ये जो हवा में पानी होने की वजह से हवा हमको उपयोगी है. जैसे हवा के वजह से या वायु के वजह से हमको स्पर्श इंद्रियां है कि नहीं, स्पर्श होता है. हमारा जो स्पर्श क्यों अनुभव हो रहा है, समझ लीजिए कि हमारा जो स्किन है, त्वचा है, वो ड्राई हो गया, उसके अंदर कोई जल नहीं है, वो सूख गया. तो उसके ऊपर कितना भी आप कुछ हवा आए, स्पर्श अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है. जब हमारा चमड़ी जो है उसके अंदर एक एक पानी है, तभी तक ये स्पर्श इंद्रियां कार्य करती है. तो इसका मतलब है वायु भी आधारित है जल के ऊपर. अंततः क्या हुआ? शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. आकाश से क्या उत्पन्न होता है? शब्द उत्पन्न होता है. तो ये शब्द भी उसका अपना प्रभाव को ढालने के लिए तो ये जल की आवश्यकता है. ये वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि हम लोग आचमन करते हैं. आचमन करने के टाइम क्या करते हैं? थोड़ा सा जल को डालेंगे, डाल के क्या बोलेंगे? ओम केशवाय नमः, है कि नहीं? तो ये शब्द जब जल में मिश्रित होता है तो उसका जो प्रभाव है अनेकों गुना तीव्र हो जाता है. इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अगर कुछ इधर कुछ शब्द उच्चारण करूँ, अगर माइक नहीं है, कुछ दूर तक ही सुनाई पड़ेगा, लेकिन मेरे और आपके बीच में भले ही 100 फुट का बड़ा तालाब अगर है, तो अगर मैं तालाब के किनारे में बैठ के कुछ एक शब्द भी बोलूँ, वो किलोमीटर दूर तक वो पहुँचेगा. पहले के ज़माने में ये ड्रामा वगैरह करते थे, वो इसी प्रकार करते थे. ड्रामा का स्टेज जो है एक बड़ा सा तालाब के बीच में एक आइलैंड, आइलैंड को क्या बोलेंगे, द्वीप बना के उसको स्टेज बनाते थे. ये सब लोग जितने भी अभिनेता सब लोग हैं वो क्या करेंगे, उधर जाएंगे, उधर स्टेज के ऊपर जाएंगे द्वीप में, उधर ड्रामा करेंगे. और वो डायलॉग जो है इतना स्पष्ट तरीके से सुनाई पड़ता है तो आप सोच भी नहीं सकते. यू डोंट इवन इमेजिन. आपको कोई भी बाकी जितना भी साउंड सिस्टम है वो सब फीका हो जाएगा उसके सामने, क्योंकि वो जलाशय की वजह से वो जो शब्द है वो जल के अंदर बहुत दूर तक स्पष्ट तरीके से प्रभावित होता है, बहुत दूर जाता है. इवन अभी भी आप मायापुर जाएंगे गुरुकुल में, उधर भी ऐसे ही बनाए हैं लोगों ने. तो उधर एक बड़ा सा घंटा गोदे खोद के पूरा जल से भर जाता है, बीच में जाके उधर एक स्टेज बनाए. उधर गुरुकुल के बच्चे जाके ड्रामा करेंगे. और वो बच्चे लोग कह रहे थे कि खास करके जब मायापुर में बाढ़ आता है, मंदिर के अंदर जो मंगल आरती होता है वो स्पष्ट रूप में क्लियरली सुनाई पड़ता है. जितना जोर से मंदिर के लोगों को ना सुनाई पड़े, वो 2 किलोमीटर दूर जो बच्चों लोग जो है उनको सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो बाढ़ जो है पानी की वजह से साउंड ट्रैवल्स इन वाटर वेरी फास्टर. द मिक्सचर ऑफ साउंड एंड वाटर, व्हेन वाटर मिक्सेस विद साउंड इट हैज गॉट एन एम्प्लीफाइड इफेक्ट. तो इस प्रकार ये जल के द्वारा ये सारा जो पंच तत्व अपना गुणों को प्रकाशित करते हैं. यानी दूसरे शब्दों में बताया जाए, ये जल जो है ये पंच महाभूतों का आत्मा मान लीजिए. अगर वो नहीं है ये सब कुछ बेकार है. तो ऐसा इतना महत्वपूर्ण जल को भी त्याग किया हिरण्यकशिपु, ऐसी तपस्या को ब्रह्मा जी सराहना कर रहे निरंभुर, वो भी एक दो दिन के लिए नहीं है, इतना सालों तक, इतना सालों तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना खाए लोग जी रहे हैं, लेकिन बिना जल पिए एक अगर एक गिलास भी पानी पी जाए प्राण शरीर के अंदर टिक सकता है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ऐसा कार्य करके दिखाया तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनका आश्चर्य जो है वो दिव्य आश्चर्य है, क्योंकि वो सोच रहे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहा है जो असंभव है। लेकिन वो मैं इतना वरदान दे भी दूं, लेकिन उनका नाश तो निश्चित है, ये राजसिक और तमसिक तपस्या है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का बहिरंगिक तरीके से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग तरीके से ये भगवान की विभूतियों का गुणगान और साथ साथ में हिरण्यकश्यपु का मूर्खता का कामुकता का भी एक प्रकार परिहास कर रहे हैं। एक बार अद्भुतता में परिहास को ये देखना, ये भागवत का ये इन श्लोकों का सिद्धांत मानना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई टीका है, कोई प्रश्न है पूछिए। हाँ, शब्द का जो ये जो प्रकट है शब्द, वो शब्द जिसकी बात कर रहे हैं वो एकदम एकदम शुरुआत में, मतलब ओम जो शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ। लेकिन सब प्रकट होने के बाद पानी का महत्व इस रूप में है कि वो सारे जो चीजें हैं बाकी सब चीजें उनका अपना गुणों को प्रकाशित करने के लिए पानी की आवश्यकता है। ये है आप जिस प्रसंग की बात कर रहे हो, ये जो शब्द है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये प्रकट होने के पूर्व का है, यानी महाविष्णु के स्तर का बात है। अभी जो मैंने कहा है प्रसंग, ये जो है ये ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म जी का सृष्टि के अंतर्गत का है। तो वो शब्द में ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के शब्द में अंतर है, समझ रहे ना, इट इज डिफरेंस। वो जो शब्द है वो दैवी शब्द है, दैट इज अ स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन विच इज अटर्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। वो टाइम में ना पृथ्वी था, ना जल था, ना अग्नि था, ना वायु कुछ था, ना शब्द था, ये पंच तत्व तो थे ही नहीं। वो दो है दैवी शब्द से, क्योंकि हर चीज एवरीथिंग मटीरियल कम्स आउट ऑफ स्पिरिचुअल, सो स्पिरिचुअल मीन्स साउंड, वो शब्द है उसमें, वो शब्द में ये पंच महाभूतों के शब्द में निश्चित रूप में अंतर है, दिस डिफरेंस। ये बड़ा गहरा विषय वस्तु है, तीसरे स्कंद में या दूसरे स्कंद में बड़ा अच्छे से वर्णन है, इनको समझना इतना आसान नहीं है, इट इज नॉट सो सिंपल। तो इतना जान लीजिए वो जो है इट इज ट्रांसेंडेंटल साउंड। जो ब्रह्मा जी ने सुना तपा, वो कौन सा शब्द है, भौतिक शब्द है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत जो है भौतिक आध्यात्मिक है, भौतिक आध्यात्मिक है, पंच महाभूत भौतिक है। तो ये पंच महाभूतों में जो शब्द है वो कौन सा भौतिक आध्यात्मिक है, भौतिक है कि नहीं। तो जो शब्द से सारा जगत निकला है वो शब्द कौन सा है कि नहीं, अभी मालूम पड़ा, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है। ऐसे जैसे एक बच्चा जो है वो तपस्या कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, तो वो नहीं खाएगा तो दुख किसको हो रहा है, बच्चे को हो रहा है कि नहीं। लेकिन उनको देख के पिता को क्यों हो रहा है दुख, पिता को जो है, पिता तो मजे से खा रहा है उसका पेट भरा हुआ है, उनका पेट भरे रहने पर भी उनको दुख हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो बच्चे से आसक्त है, बच्चे के प्रति करुणा है, दया की भावना है, है कि नहीं। तो वो दया की भावना की वजह से पर दुख दुखी, वो फॉर्मूला लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं खा रहा हूं तो मैं नहीं खाऊंगा तो परमात्मा भी नहीं खा पाएगा इसलिए परमात्मा दुखी है, उसकी वजह से दुखी नहीं है। तो परमात्मा इसलिए दुखी है, मैंने इतना सुविधा प्रदान करके दिया उनको ताकि वो अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यापन करें और मेरे पास धाम में आए, और मैंने ये भौतिक दुनिया बनाया है ताकि वो लोग सुधर जाए, लेकिन ये तो उल्टा काम ही कर रहा है। और ये मेरा पुत्र है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, पुत्र का संबंध है, मामा मामे अंशो, मेरा पुत्र इस प्रकार का घोर तपस्या कर रहा है, ना उसको भौतिक फायदा मिलने वाला है ना उसको आध्यात्मिक फायदा मिल रहा है, हे मूर्ख, ऐसा सोचते हुए भगवान जो है वो दुखी होते हैं, भगवान को कष्ट मिलता है। इसका ये नहीं कि भगवान को कष्ट इसलिए मिलता है कि अरे मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान मेरे अंदर है उनको भी कुछ नहीं मिलेगा उस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। ही इज कंपैशन, ये दया करुणा, ये गुणों की वजह से ये भगवान का और वैष्णव का ये गुण होता है। पर दुख का दुखी, दूसरों का दुख और मूर्खता देखते वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, वो भगवान का ये जो असक्तम सर्वभूतेषु निर्गुणम गुणभोक्तु च, भगवान के अनेकों प्रकार के गुण हैं। ये जो गुण हैं जो उस श्लोक में कहा गया, किस प्रकार भले ही वो जगत में रहते हुए भी फिर भी अनासक्त है, नमाम कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्मे फले स्पृहा, किस प्रकार वो कोई भौतिक चीज़ों में उनका कोई संबंध नहीं है, वो बात को वर्णन करने के लिए। तो हर एक प्रसंग में, हर एक श्लोक में एक विशिष्ट सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। परस्पर विरोधात्मक गुण एक ही समय भगवान में निवास कर सकते हैं, दया भी है और असक्तम भी है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम किसी को दया दिखाते हैं तो आसक्त भी हो जाते हैं। तो भगवान जो है दया करुणा सब दिखाते, प्रेम सब दिखाते, फिर भी असक्तम, ये विरोधात्मक गुण है। लेकिन भगवान इसलिए वो भगवान है क्योंकि टू कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज कैन को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, दैट इज वाई इज कॉल्ड सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी की जय।